ओम शांति। जो जीवन में प्रसन्न रहते हैं उनके जीवन की यात्रा सुलभ हो जाती है, उनके मित्र भी बहुत अधिक हो जाते हैं और वो जीवन की हर कठिनाई को हंसते हंसते ही पार कर लेते हैं। खुशनुमा चेहरा किसको आकर्षित नहीं करता, सब दूसरों को खुशनुमा देखना चाहते हैं पर खुद को भी खुशनुमा रखना आना चाहिए। आज हम चर्चा पुनः कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमारे इस महान खजाने को नष्ट करती हैं, इसको अग्नि की भेंट चढ़ा देती हैं। उनमें से आज पहला हम ले रहे हैं कंपैरिजन, तुलना करना। मनुष्य जीवन में कंपैरिजन बहुत करता है, तुलना करता है, दूसरों को देखता है फिर उनसे तुलना करता है, इससे उसकी सूक्ष्म खुशी नष्ट होती रहती है। एक व्यक्ति के पास एक साधारण कार है, वो दूसरे को देखता है बहुत महंगी कार है इनके पास, एक चिंतन निगेटिव चलने लगता है, उसके लिए भी निगेटिव चलने लगेगा। ऐसे वैसे पैसा कमाते हैं लोग, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं और खुशी भी गुम हो जाएगी, काश हमारे पास भी पैसा होता। कंपैरिजन, हिंदी में एक कहावत है, दूसरे की थाली में खीर सबको अच्छी लगती है अपनी में नहीं लगती। कंपैरिजन को चेक कर लें कि हम अपनी तुलना दूसरों से कैसी करते हैं। एक परिवार की बात मैं आपको सुनाऊं जो एक सत्य घटना है। किसी के पास थोड़ी सी जमीन थी और एक छोटा सा घर, एक कमरे का घर। उसके पास में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी थी, बहुत सुंदर सुंदर, लोग आते थे, कारों से आते जाते थे और सबको वो देखता था। अब उसको तुलना होती थी, मेरे पास पैसा भी नहीं, थोड़ी जगह तो है, मैं एक बड़ा मकान भी बना सकता हूँ, दो तीन मंजिल का बना सकता हूँ, पर पैसा ही नहीं है तो कैसे करूं। और वो उनको देख देख कर अपनी खुशी को नष्ट करता रहता था। डॉक्टर के पास गया, हाई बीपी था। डॉक्टर ने उसकी कहानी पूछी और कहानी पूछकर उसको कहा, तुम्हारा जहां मकान है ना, ये बहुत महंगी जगह है, 1 करोड़ में बिक जाएगी, और एक जगह बता दी, साधारण लोग रहते हैं वहां, तुम्हें 25 लाख में एक 3-4 रूम का मकान मिल जाएगा, वहां ले लो, वहां जाकर रहो, तुम्हारे पास पैसे बचेंगे, चाहो तो एक कार भी ले लेना और तुम खुश रह सकोगे। उसकी बात समझ में आ गई, वहां भी अच्छे लोग रहते हैं, यहां तो मैं अकेला गरीब हूं, सब बड़े बड़े हैं, तो चलो अपने समान लोगों के साथ रहने को मिलेगा। उसने अपना घर बेच दिया, बिल्डर को चाहिए था, उस पे वो ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर सकता था, 1 करोड़ में बिक गया। वही हुआ 25 लाख का, उसने 4 रूम्स का मकान ले लिया और वो परिवार सुखों से रहने लगा। फिर गया डॉक्टर के पास, अब तो बीपी नॉर्मल था, वो बहुत खुश था आज। तो डॉक्टर ने उसे समझाया कि देखो ये तुलना जो है ये मनुष्य को दुखी करती है, अपने में संतुष्ट रहना चाहिए, ये जो हमें दिया है ठीक है, पर ये उसकी बात भी अच्छी रही कि उसको अच्छा मकान मिल गया, पैसे मिल गए, कार भी मिल गई। अब वो देखता था मैं कार में चल रहा हूँ, दूसरे एक्टिवा पे चल रहे हैं, तो बड़ा खुश होता था, नशे से चलता था। तो हम कंपेरिजन करना छोड़ दे, अपने में संतुष्ट रहना सीखें। एक कहावत है ना, उतने पांव पसारिए जितनी लंबी सोर, चादर जितनी लंबी है पैर उतने ही पसारने चाहिए, नहीं तो बाहर निकलते रहेंगे। तो हमें भी अपनी औकात के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी अपना विस्तार करना चाहिए। हमें खुश रहना है, इस बात को हम अपना ध्येय बना लें। देखिए हम विचार करें, हम कंपेयर करें जरा आप दूसरी तरह से, किसी एक व्यक्ति को 3 बच्चे हैं, उनकी शादियां बड़े बड़े घरों में हो गई हैं, नाते हो गए हैं बड़े बड़े लोगों से, उठना बैठना हो गया है, दहेज भी बहुत मिल गया है, ये साहूकार भी हो गए हैं, परिवार बहुत शान से रहने लगा है। सोचो हमारा नाता किससे जुड़ा, जो स्वयं भगवान है, जो सारो खजानों और वरदानों का मालिक है, जो भाग्य विधाता है, जो विश्व को बदलने वाला है, जो विश्व का परिवर्तन करने वाला है, जो सबको सुख देने वाला है, वरदान देकर भरपूर कर देता है, उससे हमारे सर्व संबंध हो गए। सोचो भगवान से नाता जुड़ गया, वो हमारा जीवन साथी बन गया, वो हमारा गुड फ्रेंड बन गया, वो हमारा प्रियतम भी हो गया, हमारी माँ भी बन गया, हमारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु भी बन गया। इस नाते रिश्ते को जरा याद किया करें। और दिया क्या उसने, अब भी 9 खजाने दे दिए हमें, जो लोगों के पास हैं नहीं, उन खजानों को संसारिक खजानों से खरीदा भी नहीं जा सकता। वो है सुखों का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, स्वमान का खजाना, कितनी बड़ी चीज है, खुशियों का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना। उसने पुण्य कर्म करने सिखा दिए, पवित्रता बहुत बड़ा खजाना दे दिया उसने हमें। तो जिनके पास खजाने बहुत हों, जिनका संबंधी स्वयं भगवान बन गया हो, क्या उन्हें कम खुशी होगी? सोचो संसार में उन जैसा भाग्यवान कोई नहीं। भगवान ने स्वयं आकर जिनके भाग्य का सितारा चमका दिया हो, जिनको ऐसी विधि बता दी हो कि जैसा चाहे जन्म जन्म का भाग्य बना लो, उन जैसा खुश नसीब भला कौन होगा? तो हम अपनी खुशी को खोएंगे नहीं, हम अपनी खुशी की लगाम किसी और के हाथ में नहीं देंगे। ध्यान दें इस बात पर, हम तो खुश हैं, लेकिन किसी ने हर्ट कर दिया हमें, किसी ने बुरे वचन बोल दिए हमें, हमने अपनी खुशी खो दी। वो व्यक्ति खुश है, हमें कुछ कह के गया है, वो बहुत खुश है, उसको पता भी नहीं कि उसने कुछ कहा है। इधर हम उसकी बात को बार बार याद करके दुखी हो रहे हैं, अपनी खुशी खो रहे हैं। हमें विचार करना है, वो व्यक्ति खुश है, हम क्यों ना खुश हों? चलो उसने कोई बात कही भी हो पूर्व से, उसके मन में वो बात भरी हुई हो, और वो कह के हल्का हो गया और खुश हो गया, और दूसरों को भी जाके कह रहा, देखा आज मैं उसे मजा चखा आया, आज मैं उसे ऐसे ऐसे कह आया। तो हम इस तरह भी चिंतन करें, अब वो व्यक्ति हल्का हो गया, उसके मन का मैल धुल गया, हम भी हल्के हो जाएं, उस बात को एक्सेप्ट ही ना करें, हम रिसीव ही ना करें। चलो वो हल्का हुआ, हम तो पहले ही हल्के हैं, हमने उसे खुशी प्रदान कर दी, हमारी खुशी डबल हो गई, ऐसा चिंतन करें। तो हमारी खुशी का आधार हमारा श्रेष्ठ चिंतन है। अगर हमने अपनी खुशी की लगाम दूसरों के हाथ में दे दी, तो जैसे लगाम अगर सवार के हाथ में है तो घोड़े को कैसे इधर उधर भटकाएगा, हमारी खुशी की लगाम हमारे अपने हाथ में हो, हम संकल्प कर लें आज, हमारी खुशी को हमसे कोई छीन नहीं सकता। खुशी हमें दी है स्वयं सर्वशक्तिमान ने, और छीनने वाले हैं छोटे लोग। कोई विषय विकारी है, कोई गंदा है, कोई ईर्ष्यालु है, कोई वैर भाव रखने वाला है, देने वाला कितना बड़ा, छीनने वाले कितने छोटे से निम्न स्तर के लोग। तो हम इस नशे में रहें, भगवान ने हमें खुश रहने का वरदान दिया है, इस वरदान को हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो रोज सवेरे एक बार सूक्ष्म लोक में जाकर फील किया करें, बाबा का वरदान हाथ मेरे सिर पर है, और बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाकर वरदान दिया, बच्चे सदा खुश रहो, खुशी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम खुश नहीं रहोगे तो संसार में कौन खुश रहेगा। श्रेष्ठ भाग्य जिनके द्वार पर खड़ा है वो खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा। भगवान जिनके घर में मेहमान बनकर आया है वो खुश नहीं रहेंगे तो भला कौन खुश रहेगा। सोचो भविष्य जिनका बहुत उज्जवल है, स्वर्ग की बादशाही मिलने जा रही है, उन्हें कितनी खुशी होनी चाहिए अपनी प्राप्तियों की। तो हम सभी गांठ बांध लें, हमारी खुशी पर हमारा अधिकार है और किसी का नहीं। जब भी कोई बात सामने आ जाए उस बात को जल्दी से जल्दी खत्म करें, बात को चलाएं नहीं। एक इम्पोर्टेंट बात है, कुछ बात आई उसको चलाएं नहीं लंबा समय। अगर हम उसे लंबा समय चलाते हैं तो बात छोटी सी भी हमें परेशान करने लगती है, क्योंकि हम निगेटिव हो जाते हैं, हम ज्यादा सोचने लगते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। हम ये बार बार बताते हैं, आपको ख्याल में आ गया होगा, अगर हम बहुत सोच रहे हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं, वो क्षीण हो रही हैं, वो कमजोर पड़ रही हैं। इससे हमें आगे चलकर बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हम सारा काम मन की शक्तियों से करते हैं, बुद्धि की शक्ति से करते हैं और शरीर की शक्ति से भी करते हैं। ये तीनों शक्तियां हमें चाहिए। तो हम मन की शक्ति खो देते हैं, उसका असर तन पर भी पड़ता है और बुद्धि की विवेक शक्ति पर भी पड़ता है। आगे चलें। मन उसकी खुशी को नष्ट करती हैं उसकी इच्छाएं और कामनाएं। श्रीमद् भगवद गीता में तीन चीजें बहुत आई हैं, कर्मेंद्रियों के आकर्षण और इच्छाएं और कामनाएं। ये जैसे नौका को बहा ले जाती हैं अपने बहाव में, दिशाहीन कर देती हैं। हम एक्सपेक्ट जरूर करें, एक स्टूडेंट है, अब उसके 12वीं के रिजल्ट आ रहे हैं, आएंगे। उसने एक्सपेक्ट किया था 95% मार्क्स आने हैं, बहुत होशियार है, बहुत मेहनत की है, सब कुछ छोड़ा है, नींद को भी कम किया है और बिल्कुल उसके इतने ही आने चाहिए, वो इसका अधिकारी है। पर मान लो दूसरे दो के तो 95% आ गए, इसके 93% रह गए, तो देखने में यह आता है कि बच्चे की खुशी समाप्त हो जाती है। तो हमें क्या सीखना है? हाईएस्ट टारगेट रखना सबसे सुंदर बात है जीवन में। लक्ष्य टारगेट अधिक से अधिक आप बनाएं, लेकिन जो कुछ प्राप्त हो जाए उसको स्वीकार करके प्रसन्न रहें। अब 93 की भेंट में अब नीचे वालों को देखो जिनके 80 आए हैं, आपका साथी बहुत होशियार था उसके 90 आए हैं, कुछ लोग केवल पास हुए हैं 45 आए हैं, उनसे अपनी कंपैरिजन करो तो आप प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे तो बहुत ज्यादा आ गए, रैंक में तो मेरा नाम है ना। एक्सपेक्ट करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके अधीन होना ये अच्छी चीज नहीं है। वो निष्काम भाव की चर्चा तो बहुत गहरी है गीता में, जिसके आधार से हम ऐसे कर्म करते हैं कामना रहित होकर, कि कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। हमने बहुत अच्छी मेहनत की, आज हमने भोजन बहुत अच्छा बनाया, घर में मेहमान आए हैं, दिल से बनाया, बहुत टेस्टी बनाया, लेकिन दो लोग ऐसे भी थे जिनको अच्छा नहीं लगा, अभी हम दुखी हो जाएं। मान लो उन्होंने बोल भी दिया कहीं इधर उधर, भोजन में मजा नहीं आया, 10 लोगों को तो बहुत मजा आया पर 2 को मजा नहीं आया, तो ये उनके अपनी टेस्ट की गड़बड़ भी हो सकती है। वो ज्यादा ही चटपटे लोग हों, वो मिर्ची ज्यादा खाते हों, वो खट्टा मीठा ज्यादा खाते हों, तो उसमें हमारा क्या दोष? हमने अपना बहुत दिल से प्यार से अच्छी तरह सबकी खातरी की, हमें संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। किसी एक दो की बात सुनकर अपनी खुशी को खो नहीं देना चाहिए। ये बात प्रैक्टिकल में बहुत होके सामने होती है, इसलिए कर्म करो और कर्म को प्रभु अर्पण कर दो। अब तुम जानो, और जो श्रेष्ठ योगी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो तो कर्म के परिणाम को भी प्रभु अर्पण कर देते हैं। कर्मातीत अवस्था की ये डेफिनेशन है कि कर्म को और कर्म के परिणाम को दोनों को प्रभु अर्पण करके दोनों के प्रभाव से मुक्त रहने वाले कर्मातीत होते हैं। बहुत गहरी बात है। गहरी क्यों ना हो, क्योंकि कर्मातीत अवस्था तो सर्वोच्च स्थिति अध्यात्म की, किसी मनुष्य आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो हम अपने जीवन में भिन्न भिन्न फील्ड में हम इस चीज को जरा ध्यान पूर्वक चेक करें कि हम एक्सपेक्ट तो बहुत रखते ही हैं हर जगह, हमारा कार्य भी बहुत सुंदर हो, उसकी भी हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप आईटी हैं, आईटी में इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आपको एक टारगेट मिला है, आप वो कार्य करते हैं। मान लो कुछ रह गया तो आपने सच्चे दिल से काम किया। बस देखना यह है कि हम सच्चे दिल से काम करते हों, हम कहीं केयरलेस न होते हों, हम टाइम वेस्ट न करते हों, फिर रिजल्ट जो भी आ गया उसको स्वीकार करके हल्के रहना चाहिए। अगर आपका बॉस भी आपको कुछ ऐसा वैसा बोलता है, उनको भी आप कन्विंस करें, आज कमी रह गई, कल हम इसे पूर्ण कर देंगे, डबल काम कर लेंगे। ऐसे ही इच्छाओं की जो आंधी है वो भी बहुतों को तंग कर रही है। और ऐसा देखा जाता है कि संसार में बहुत लोग खुश रहते ही नहीं, उन्हें कुछ भी मिल जाए फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं। हमारी ऐसी मनोस्थिति ना हो, हमारा ऐसा मूड ना हो। कुछ लोग हैं, मिला बहुत प्रसन्न है, चलो दो चार घंटा एक दो दिन की भी प्रसन्नता मायने तो रखती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं मूडी से फट से नाराज हो जाते हैं, रूस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खुद भी दुखी हो जाते हैं तो दूसरों को भी दुखी करने लगते हैं। ये हमारी नेचर ना हो। घड़ी घड़ी मूड बदलने वालों का जीवन अच्छा नहीं चलता है। आप देखो, आप एक कन्या है, आप में मूड बदलने की बहुत बुरी आदत है, आपका संस्कार हो गया है। जब आप माँ बाप के घर में हैं, तो आप घड़ी घड़ी मूड बदलती हैं। माँ बाप राजी करते हैं, आपको मनाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन आप माँ बन गई हैं, अब आपके तीन बच्चे हैं। अब आप सोचो वो घड़ी घड़ी मूड ऑफ करते हैं, कोई रो रहा है, कोई रूस रहा है, कोई कुछ मांग कर रहा है, नाराज हो रहे हैं, आपकी क्या मनोस्थिति होगी। इस बात को सभी समझते हुए एक लक्ष्य बनाए कि हमारा काम है अपने बड़ों को भी हल्के रखना, क्योंकि हमें ऐसी धारणाएं, ऐसे संस्कार अपने जीवन में बनाने हैं जो आगे चलकर हमें सुख दें। नहीं तो आपके सास ससुर कहेंगे माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए। अब माँ बाप ने संस्कार थोड़ा ही दिए, संस्कार के तो उसके खुद के अपने हैं संस्कार, तो वो किसी से आए नहीं है, आत्मा में अपने ही संस्कार होते हैं। आत्मा अपने ही संस्कारों को बिगाड़ती है या सुधारती है, तो हमें अपने संस्कारों को खुद श्रेष्ठ बनाना है। सदा खुश रहने का संस्कार, सदा हल्का रहने का संस्कार, सदा प्रेम बांटने का संस्कार, दूसरों को देने का संस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देने का संस्कार। बहुतों में लेने का संस्कार होता है, इधर उधर से खींचते जाओ, हड़पते जाओ, छीनते जाओ, ये संस्कार अच्छा नहीं है। छीनने की बात आ गई तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमें सत्ता भी मिल रही हो, राजाई भी मिल रही हो और हम उसे छीन के ले रहे हों, वो सत्ता भी सुखदायी नहीं होगी। यदि हमें बहुत बड़ी प्राप्ति हो रही हो लेकिन मांग कर हो रही हो, वो भी बहुत कल्याणकारी नहीं होगी। कल्याणकारी वो चीज होती है जो हम अधिकार से लेते हैं। दान में दी हुई चीज भी सुखदायी, कल्याणकारी, लाभप्रद नहीं होती है, हम अधिकारी बने, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो ये हमारे लेवल को ऊंचा उठाएगा, हम छोटे लेवल से जरा ऊपर चलें। तो इच्छाओं की गुलामी को हम छोड़ें, चेक करें आज आप किस किस चीज की मुझे इच्छा होती है। इस तरह का भोजन मिले तो मैं बहुत सुखी। अभी लॉकडाउन का जमाना आ गया है, न जाने कब तक चलेगा, आपको घर में रहना है। चलो अब खुल भी गया है थोड़ा थोड़ा, आप अपनी माँ पे दबाव बनाए रखते हैं, मुझे तो यही खाना है, चार बच्चे हैं, चारों अलग अलग दबाव बना कर रखते हैं, ये खाना है ये खाना है। अगर मम्मी बुद्धिमान है तो सेट कर लेगी, आज ये बना देंगे, दो दिन के बाद ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। सबको प्रसन्न करना अगर उसको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आता तो इच्छाएं पूर्ण न होने से आपके घर में खुशी नहीं रहेगी। इसलिए हम सभी, चाहे छोटी बातें हो, कपड़ों की बात हो, नौकरी की बात हो, घर में साज सामान की बात हो, घर सजाने की बात हो, बड़े छोटे घर की बात हो, इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं मनुष्य को हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कराया हूं कि टारगेट ऊंचा रखना अलग बात है, इच्छाएं जो दुखी करें, जो हमारी शक्तियों को नष्ट करें, जो हमारी खुशी को छीन लें, जो हमें अच्छा न बनने दें, जो हमें हमेशा नीचे के स्तर पर रखें, वो अलग चीज होती है। ऊंचा लक्ष्य बनाना, ऊंची एक्सपेक्टेशन रखना, उसके लिए वर्क करना, अपने को डेडिकेट करना, इट्स ए ग्रेट थिंग। लेकिन छोटी इच्छाओं के गुलाम हो जाना कि यही जूता चाहिए था, नहीं मिला तो मूड ऑफ, सारी शक्तियां जूते में यूज हो रही हैं, ये जूता चाहिए, यही चाहिए, पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लग रहा है, काम धाम पे भी ध्यान नहीं लग रहा, ये बहुत बड़ी गलती है। तो समझदार व्यक्ति को इन छोटी चीजों से मुक्त हो जाना चाहिए और देखना चाहिए हमारा अधिक पैसा इच्छाओं के पीछे तो नहीं जा रहा। कई लोग तो लोन लेकर भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, फिर जब लोन से दब जाते हैं तब उन्हें होश आती है कि अब क्या करेंगे। सामान भर लिया है घर में, सामान तो बहुत है लेकिन लोन भी बहुत हो गया, कर्ज भी बहुत हो गया, खुशी जा रही है, अब नींद नहीं आती है, उसी की चिंता रहती है। क्यों ना हम संयमित जीवन जीना सीख लें। जो ज्ञानी हैं, राजयोगी हैं, जो ब्रह्मावत्स बन गए हैं, उनके लिए तो शिव बाबा ने बहुत अच्छा स्लोगन दिया, इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात इच्छाओं का इतना त्याग हो जाए, हमारा जीवन ऐसा तप्त और संतुष्ट हो जाए, हम अंदर से ऐसे भरपूर रहने लगे कि इच्छा क्या होती है इसका हमें आभास भी ना हो, जैसे किसी के पास बहुत चीजें हों, भरपूर हों खजाने, सब सुखों के साधन हों, तो उन्हें थोड़ा ही कोई इच्छा रहती है। सतयुग में जैसे हम सब की स्थिति होगी, सब कुछ प्राप्त है, ये कोई इच्छा नहीं, वहां कोई इच्छाओं का गुलाम ही नहीं होगा, इच्छाओं के पीछे कोई भटकता ही नहीं रहेगा। तो हम ये स्थिति बनाए, और ये स्थिति तब होती है जब हम ईश्वरीय सुखों से तृप्त हो जाते हैं, हमें इतना ईश्वरीय सुख मिल जाए कि उसके सामने ये छोटी छोटी चीजें नीरस प्रतीत होने लगे, हमारा अंतर्मन कहने लगे तुम किनके पीछे भाग रहे हो, तुम्हें तो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां हो गई हैं, ये तो विनाशी चीजें हैं, इससे कभी तुम तृप्त नहीं होगे, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, अविनाशी आत्मा कभी भी विनाशी चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकती, चाहे वो कितने भी ज्यादा हो, यही राज है, यही सार है। इसलिए आओ हम सभी खुश रहना सीखें, मूड एक रस करें अपना, छोटी बातों पे ज्यादा ध्यान न दें, छोटी बातों को वैल्यू ही न दें, वैल्यू दें हमारी अपनी खुशी को। मैंने पहले दिन आपको एक बात कही थी, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो खुशी के खजाने को बहुत बढ़ा दे, इतना बढ़ा दें कि हम सारे संसार को खुशियां बांट सकें। ओम शांति।